ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। तो हम आज शिव भागवत पाठ करेंगे, आठवां स्कंध है और अध्याय है 19 और अध्याय का शीर्षक है बलि महाराज से वामदेव द्वारा दान की याचना, और श्लोक संख्या 22 से लेकर 24 तक हम के ऊपर चर्चा करेंगे और 24वां श्लोक यहाँ पर बोर्ड पे लिखा। उससे पहले हम पुरुषोत्तम दास ठाकुर के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं जो चैतन्य चक्रवर्ती में दिया गया है, क्योंकि आज उनका भी प्राकट्य दिवस है। तो ये चैतन्य चक्रवर्ती आदि लीला के 11वें अध्याय में दिया गया है 38वें से लेकर 40वें श्लोक तक। श्री नित्यानंद प्रभु के 23वें और 24वें भक्त सदाशिव कविराज था, उनके पुत्र पुरुषोत्तम दास थे जो 10वें गोपाल थे। श्री सदाशिव कविराजा बड़ा महाशया श्री पुरुषोत्तम दास जन से ही पुरुषोत्तम दास नित्यानंद प्रभु के चरण कमलों की सेवा में निमग्न रहते थे और सदैव कृष्ण के साथ बच्चों जैसे खेल में लगे रहते थे। आजन्म निमग्न नित्यानंदे चरणे निरंतर बाल्य लीला करे कृष्ण साने। तात्पर्य इस प्रकार से श्री भक्ति सिद्धांत ठाकुर अपने अनुभाष में लिखते हैं, सदाशिव कविराज था नागर पुरुषोत्तम पिता पुत्र थे जिन्हें चैतन्य भागवत में महाभाग्यवान कहा गया है। वह वैद्य जाति के थे। गौर वर्णदेश दीपिका के 156वें श्लोक के अनुसार कृष्ण की सर्वाधिक प्रिय गोपी चंद्रावली के बाद में सदाशिव कविराज के रूप में जन्म लिया। श्लोक 194 से लेकर 2200 तक ये कहा गया है कि सदाशिव कविराज के पिता कंसारी सेन पहले कृष्णलीला की रत्नावली नामक गोपी थी। सदाशिव कविराज के परिवार के सारे लोग चैतन्य महाप्रभु के भाव महान भक्त थे। पुरुषोत्तम दास ठाकुर कभी कभी सुख सागर में रहा करते थे जो चक्रदात तथा शिवराली स्टेशन के निकट है। पुरुषोत्तम दास ठाकुर के जितने विग्रहों की स्थापना की थी वह सभी बड़े बेले डांगा ग्राम में थे, किंतु मंदिर के ध्वस्त हो जाने पर वह विग्रह सुख सागर लाए गए। जब मंदिर गंगा नदी के पट में चला गया तो उन विग्रहों को जाना माता के विग्रह समेत साहिब डांगा बेड़ी ग्राम लाया गया। चूंकि स्थान भी विनष्ट हो चुका है अतः सारे विग्रह चांदूडे ग्राम में स्थित हैं, जो पालपाड़ा से 1 मील ऊपर की ओर स्थित है। श्री पुरुषोत्तम दास ठाकुर जी की जय। श्री पुरुषोत्तम दास ठाकुर अविनाश की महामहोत्सव की जय। शिव भागवत से पाठ करेंगे, आठवां स्कंध है और अध्याय 19 और श्लोक संख्या 22 से लेकर 24 तक। तो पहले मैं 22 और 23 पढ़ लेता हूँ, उसके बाद फिर हम 24 का साथ मिलकर विचार करेंगे। त्रिभिक्रमेण संतुष्टो द्वीपेनापि न पूर्यते न वर्ष समेतेन सप्तद्वीपे रक्षया। यदि मैं 3 पग भूमि से संतुष्ट ना हूं तब तो ये निश्चित है कि 9 वर्षों से युक्त 7 द्वीपों में से 1 द्वीप पाकर भी मैं संतुष्ट नहीं हो सकूंगा। यदि मुझे 1 द्वीप भी मिल जाए तो मैं अन्य द्वीपों को पाने की आशा करूंगा। सत्वद्वीपाधिपतयो नृपा वैन्या यादयः अर्थे कामगतानांतं तृष्णाया इति नहशुतम्। हमने सुना है कि यद्यपि महाराज पृथु तथा महाराज गया जैसे शक्तिशाली राजाओं ने 7 द्वीपों पर अधिकार प्राप्त कर लिया था, किंतु फिर भी उन्हें ना तो संतोष प्राप्त हुआ ना ही वे अपनी इच्छाओं का कोई अंत पा सके। अभी 24वां श्लोक है जो कि बोर्ड पर लिखा हुआ है। यद्चयोपपन्नेन संतुष्टो वर्तते सुखम् संतुष्टो वर्तते सुखम्। संतुष्टा स्त्रीभिर्लोकैः अजितात्मोपसादितः अजितात्मोपसादितः यदच्छयोपपन्नेन संतुष्टो वर्तते सुखम्। नासंतुष्टः
श्रीभिर्लोकैः
अजितात्मोपसादितैः यदच्छयोपपन्नेन संतुष्टो वर्तते सुखम्। नासंतुष्टः
श्रीभिर्लोकैः
अजितात्मोपसादितैः। अपने कर्म के अनुसार परम सत्ता द्वारा जो कुछ प्रदत्त है, उपपन्नेना जो कुछ मिला है उससे संतुष्ट मनुष्य को संतुष्ट होना चाहिए। वर्तते है सुखम सुख न नहीं असंतुष्ट असंतुष्ट के लिए त्रिभी लोके तीनों लोकों को पा लेने पर अजितात्मा जो अपने इंद्रियों को वश में नहीं कर सकता उपसादित भले ही प्राप्त क्यों न कर ले। अनुवाद मनुष्य को अपने प्रारब्ध से जो कुछ मिलता है उससे संतुष्ट रहना चाहिए क्योंकि असंतोष से कभी भी सुख प्राप्त नहीं हो सकता। जो व्यक्ति आत्मसंयमी नहीं है वह तीनों लोकों को भी पाकर सुखी नहीं होगा। मनुष्य को अपने प्रारब्ध से जो कुछ मिलता है उससे संतुष्ट रहना चाहिए क्योंकि असंतोष से कभी भी सुख प्राप्त नहीं हो सकता। जो व्यक्ति आत्मसंयमी नहीं है वह तीनों लोकों को भी पाकर सुखी नहीं होगा। तात्पर्य यदि सुख ही जीवन का चरम लक्ष्य है तो प्रारब्ध से जो पद प्राप्त हुआ है उसी से मनुष्य को संतुष्ट रहना चाहिए। प्रहलाद महाराज ने भी यही आदेश दिया सुखम इंद्रियकम दैत्या देह योगेन देहिनां सर्वत्र लभ्यते दैवात् यथा दुखम अत्यंततः। हे दैत्य मित्रों देह स्पर्श के द्वारा इंद्रिय विषयों से मिलने वाला सुख किसी भी जीवन में अपने पूर्व कर्मों के अनुसार प्राप्त किया जा सकता है। ऐसा सुख बिना किसी प्रयास के स्वतः प्राप्त हो जाता है जिस प्रकार हमें दुख प्राप्त होता है। भागवत का सातवें संत का छठे अध्याय का तीसरा श्लोक है। सुख प्राप्ति के संबंध में ये विचारधारा बिल्कुल सही है। भगवद गीता के छठे अध्याय के 21वें श्लोक में असि सुख का वर्णन इस प्रकार हुआ है सुखम आत्यंतिकम यदत् बुद्धि ग्राहा विदेन्द्रियम वेत्ति यत्र न चैवायम स्थितश्चलन्ति तत्त्वतः। आध्यात्मिक रूप से हर्षमय व्यक्ति हर्षमय स्थिति में मनुष्य असीम दिव्य सुख में रहता है और दिव्य इंद्रियों के द्वारा भोग करता है। इस प्रकार स्थापित हो जाने पर वह फिर सत्य से कभी दूर नहीं जाता। मनुष्य को सुख की अनुभूति परा इंद्रियों से करनी होती है। परा इंद्रियां भौतिक तत्वों से बनी इंद्रियां नहीं होती। हमें यह प्रत्येक व्यक्ति आध्यात्मिक प्राणी है अहम ब्रह्मास्मि और प्रत्येक व्यक्ति व्यष्टि देही है। इस समय हमारी इंद्रियां भौतिक तत्वों से आच्छादित हैं और अज्ञान के कारण आच्छादित करने वाली इन इंद्रियों को हम वास्तविक इंद्रियां मान लेते हैं किंतु वास्तविक इंद्रियां तो भौतिक आवरण के भीतर हैं। धैनोस्मिन यथा देहे भौतिक तत्वों के आवरण के भीतर आध्यात्मिक इंद्रियां होती हैं। सर्वोपरि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम आध्यात्मिक इंद्रियों के अनाच्छादित होते ही हम इन इंद्रियों के द्वारा सुखी हो सकते हैं। आध्यात्मिक इंद्रियों की तुष्टि का वर्णन इस प्रकार हुआ है ऋषिकेना ऋषिकेशा सेवनम भक्ति रचते। जब इंद्रियां ऋषिकेश की भक्ति में लगी रहती हैं, तो इन इंद्रियों को पूर्ण तुष्टि होती है। इंद्र तृप्ति के इस श्रेष्ठ ज्ञान के बिना कोई अपनी भौतिक इंद्रियों को तुष्ट करने का प्रयास कर सकता है, किंतु उसे सुख कभी नहीं मिल सकता। इंद्र तृप्ति की अपनी अभिलाषा को चाहे कोई बढ़ा चढ़ा ले और अपनी इंद्र तृप्ति के लिए इच्छित फल भी प्राप्त कर ले, किंतु उसे कभी संतोष प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि यह भौतिक स्तर पर होता है। ब्राह्मण संस्कृति के अनुसार मनुष्य को बिना किसी विशेष प्रयास के जो प्राप्त हो जाए उसी में संतुष्ट रहना चाहिए और आध्यात्मिक चेतना का अनुशीलन करना चाहिए, तभी वह सुखी होगा। कृष्ण भावामृत आंदोलन का प्रयोजन इसी ज्ञान का प्रसार करना है। जिन व्यक्तियों को वैज्ञानिक आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है, वे भ्रमवश सोचते हैं कि कृष्ण भावामृत आंदोलन के सदस्य भौतिक कार्यकलापों से दूर रहने का प्रयास करने वाले पलायनवादी हैं, जबकि तथ्य यह है कि हम जीवन के चरम सुख को प्राप्त करने के लिए वास्तविक कार्यों में लगे रहते हैं। यदि किसी को आध्यात्मिक इंद्रियों को तुष्ट करने का प्रशिक्षण नहीं मिले और वह भौतिक इंद्रिय तृप्ति में लगा रहे, तो उसे कभी भी नित्य तथा आनंदमय सुख नहीं मिल सकेगा। अतः श्रीमद् भागवतम के पांचवें स्कंध के पांचवें अध्याय के पहले श्लोक में संस्तुति की गई है, तपो दिव्यम पुत्रिका येन त्वं शुद्धेन यस्मात् ब्रह्म सौख्यं तदनन्तरम्। मनुष्य को तपस्या करनी चाहिए जिससे उसका जीवन पवित्र हो जाए और उसे असीम आनंदमय जीवन की प्राप्ति हो सके। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वनातिकं। वन्देहं श्री गुरौ श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साकजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्ण सहगणलिता श्री विशाखान्विताश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कांति राधा कांति नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरूपेश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासनी गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण कृष्णाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी विचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्येश। मूकं करोति वाचालं पंगुं लङ्घयति गिरिं यत्पादमहं वन्दे श्रीगुरुदीनकारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्येश्वरं। हरे कृष्णा। तो यहाँ बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा हो रही है, वो है संतुष्टि के भाव के ऊपर। श्री राधा राधे रमन जी की जाए, जगन्नाथ बलि सुधरमय प्रभु सुदर्शन की जाए, श्री कृष्ण वरनाम की जाए, श्री गौरताय की जाए। तो यहाँ पर चर्चा आ रही है किस प्रकार से कब हमें संतुष्टि मिलेगी, क्या हासिल करके हमको संतुष्टि मिलेगी। तो यहाँ पर लिखा है मनुष्य को अपने प्रारब्ध से जो कुछ मिलता है उससे संतुष्ट रहना चाहिए, क्योंकि असंतोष से कभी भी सुख प्राप्त नहीं हो सकता। जो व्यक्ति आत्मसंयम में नहीं है वह तीनों लोगों को भी पाकर सुखी नहीं होगा। तो संतुष्टि की भावना का विकास करना बहुत ज्यादा आवश्यक है। पूरा संसार जो है जो घूम रहा है, सारी जो एक्टिविटी है ना, वो इसीलिए क्योंकि असंतोष है, संतोष नहीं। किसका नाम भले संतोष हो लेकिन उसके हृदय में संतोष नहीं है, क्योंकि यहां संसार में क्या नाम और नामी में भेद होता है। भगवान का जो आध्यात्मिक जगत है वहां नाम और नामी में भेद नहीं है, लेकिन भौतिक जगत में नाम और नामी में भेद होता है। तो यहाँ नाम तो किसका संतोष होता है, हो सकता है किसी का नाम संतोषी हो लेकिन संतोष उस बेचारे के पास नहीं है। जैसे कि दशरथ महाराज की बेटियां थी, उसका नाम था शांति, लेकिन उनके पास शांति नहीं थी। बेटी थी शांति के रूप में, लेकिन शांति नहीं थी, पुत्र का प्राप्त होगा। तो ये जो है संसार में ऐसे ही होता है। अफकोर्स दशरथ महाराज जो है वो देवी लीला में, लेकिन वो शिक्षा दे रहे हैं कि जगत में आएंगे तो क्या हाल होगा हमारा। तो असंतोष की भावना जो है यहाँ पर हमेशा बनी रहती है, क्योंकि यहाँ पर जो हमारी इंद्रियां हैं वो सुख की अभिलाषा करती है बाहर की ओर, क्योंकि ये जो शरीर है डिजाइन ऐसे किया गया ब्रह्मा जी के द्वारा कि हमारी चेतना बाहर की ओर फेंकती है। तो बाहर ही हम तुष्टि चाहते हैं, संतुष्टि बाहर से मिल जाए, कुछ मुलायम चीज को छू लूं उससे संतुष्टि मिल जाए, कुछ स्वादिष्ट चख लूं उससे संतुष्टि मिल जाए, कुछ सुंदर देख लूं उससे संतुष्टि मिल जाए, कुछ कुछ मधुर सुन लूं उससे संतुष्टि मिल जाए। तो जो चेतना है बाहर की ओर जाती है संतुष्टि को ढूंढने के लिए। जैसे कि हिरण होता है वो बाहर ही ढूंढा होता है खुशबू कहां से आ रही है, खुशबू कहां से आ रही है, जबकि नाभि से आ रही है उसकी, हाँ कस्तूरी की खुशबू, तो लेकिन बाहर ही देखता है। या फिर वो अमृत तृष्णा जैसे बोलते हैं कि उसको बाहर पानी नजर आता है लेकिन पानी वहां होता है, लेकिन वो भागता रहता है, भागता रहता है कि पानी मिलेगा, एक दिन पानी मिलेगा, एक दिन पानी मिलेगा, हम होंगे कामयाब, एक दिन शांति आएगी, होगी शांति चारों ओर, शांति आती, शांति आती। तो ये भागा दौड़ी जो है लगी रहती है, लगी रहती है, लगी रहती है। तो असंतोष पूरा संसार जो है उसकी क्रिया इसलिए है क्योंकि असंतोष है यहां पर। तो संतोष को ढूंढने के लिए जो है व्यक्ति हाँ वहां सब प्रकार की क्रियाओं में लगा रहता है। तो इसलिए यहां पर संतोष की या खुशियों की एडवर्टाइजमेंट तो बहुत अच्छी है, यहां पर बहुत ही जगह पर एडवर्टाइजमेंट बहुत अच्छी है, मतलब एडवर्टाइजमेंट में तो नंबर वन मानना पड़ेगा। तीन जगह पर देखते हैं लोग बड़े संतुष्ट बड़े खुश नजर आते हैं, एक तो मूवीज में, एक टीवी सीरियल्स में, और तीसरा बिलबोर्ड्स में। इन तीन जगह लोग बहुत खुश है, बहुत खुश है। बिलबोर्ड देखो मालबोरो सिगरेट, उसमें बंदा है साथ में लड़की खड़ी है सिगरेट फूंक रहा है या अपनी फेफड़े बाहर निकाल रहा है, खुश है। टीवी है, टीवी में बने उसने बनारसी साड़ी पहनी है, चकला बिल लगी हुई है, लेकिन बनारसी साड़ी पहन करके कितना मतलब सुख होगा, नाइस। मूवीज है वही बर्फ में है बिना स्वेटर पहने हुए और एक दूसरे बर्फ के गोले मारते हुए गाना गा रहे हैं और संतुष्टि है। कभी दिखा गया ऐसा? उसके बाद कुछ ठीक है हुई निमोनिया हुआ वो थोड़ी दिखाएंगे मूवी के अंदर, लेकिन देख के प्रेरणा मिलती है, संतुष्टि तो है। देखो संसार में ना एडवर्टाइजमेंट बहुत बढ़िया है यहाँ पर, तो एडवर्टाइजमेंट के मामले में खुशियों और संतुष्टि की जो एडवर्टाइजमेंट है ना यहाँ पर बहुत ही जबरदस्त है, बहुत जबरदस्त। ऐसे एक बार एक सर्कस लगा था, उसका नाम था संतुष्टि सर्कस। तो इसमें केस ये था कि एट अ टाइम एक ही व्यक्ति जा करके ये देख सकता है इसको, एक ही व्यक्ति मतलब वन मैन शो, आपको एक बहुत बढ़िया गद्दी बिठाया जाएगा और आपको वो शो दिखाया जाएगा सर्कस का। तो रात के 3 बजे लाइन लगनी शुरू हो गई, भाई हम जाएंगे और जाके शो देखेंगे, और शो जो शुरुआत हो गई पहला व्यक्ति जो 3 बजे से लगा हुआ था उसको फिर 9 बजे मान लीजिए जब सर्कस खुला तो अंदर गया, अंदर गया, कोई सर्कस नामो निशान नहीं, कोई नामो निशान नहीं, अरे ऐसे कैसे। तभी जो है दरवाजे वाले बंद हो गए, इसको बिठा दिया गया, उसका रिंग मास्टर आया, उसने कोड़े मारे इसको लेफ्ट राइट बुरी तरह से, पैचल हो गया सर्कस जा, कहता अरे कहता और खाना खाने नहीं तो जा चला गया। अभी बाहर गया तो उसने सोचा कि ना अगर मैं लोगों को ये बताऊंगा कि मेरे साथ अंदर ये हुआ, लोग कहेंगे हाँ सर ये हुआ 3 बजे से लगा था यार, बताओ अंदर ये हुआ सीधा। तो बाहर आके बोला अरे यार क्या सर्कस था, कमाल, जस्ट अमेजिंग, वंस इन अ लाइफ टाइम, वंस इन अ लाइफ टाइम, इतना। दूसरा वाला व्यक्ति बहुत एक्साइटेड हो गया कि भैया उसके साथ तो इतना बढ़िया अनुभव रहा इसका, तो मेरे साथ ही बहुत अच्छा होगा। तो वो भी अंदर जाता है, सेम सलूक उसके साथ भी होता है, वो पिटाई खाता है वो भी, और उसको धक्के मार के भाग देते हैं, वो कैसे कर जा दफा ऐसे। अरे यार बाहर जाकर उसने सोचा कि ना अगर मैं ये बताऊंगा मेरे साथ ये हुआ, क्योंकि पहले वाले के साथ खूब मजा हुआ था, तेरे साथ ऐसे कैसे हो गया। तो इससे भी बाहर आकर बोला अरे यार कमाल का सर्कस था, वंस इन अ लाइफ टाइम मैन, वंस इन अ लाइफ टाइम। तो ये भौतिक जीवन का सर्कस है, इसमें पिटाई तो सभी की होती है, लेकिन बाहर आके क्या बोलते हैं, हाउ आर यू डूइंग, कूल, रॉकिंग, कैसी लाइफ यार, कूल यार, बड़े चल रही है, मस्त है, मस्त है, क्या मस्त है, अरे कमबख्त, यहां पर क्या मस्त होती है लाइफ कभी किसी, यहां तो सफरिंग मस्त है, मस्त कोई भी नहीं है यहां पर। तो यहां ये असंतोष का, ये पूरा जो भौतिक जगत है ये असंतोष का सर्कस है, और यहां पर जो है खुशियों की तृष्णाएं जो है हमेशा बनी रहती है, लेकिन व्यक्ति जो है कभी सुखी सुखी नहीं पाता। ये प्रभुपाद के शिष्य थे, तो उसने पूछा कि श्री प्रभुपाद आप कहते हो कि ना वी शुड अवॉइड सेक्स लाइफ, लेकिन हम किससे प्यार करते हैं, तो सेक्स लाइफ के बिना तो हम प्यार किससे कर नहीं सकते, आई वांट लव एंड लव इज इनकंप्लीट विदाउट सेक्स लाइफ। प्रभुपाद उसका हाथ पकड़ा और उसको जो है खिड़की पर लेके गए, और नीचे काफी लोग थे, उसमें कई माताएं भी थी, कहते किसी को भी ले लो शादी कर लो लेकिन ना तुमको सेक्स मिल जाएगा, बट प्रेम के अविनाश नहीं आउट करना, लव इज नॉट इन दिस मटेरियल वर्ल्ड, सेक्स में भी देर पर लेकिन ना प्रेम यहां नहीं मिलेगा, प्रेम यहां पर क्या पायलटेड कॉपी मिल जाएगी, उसकी नकली कॉपी मिल जाएगी ना, पार्ले भी वो मिल जाएगा, लेकिन असली वहां नहीं मिलेगा, नेहरू प्लेस खुला पूरा संसार के नेहरू प्लेस ही असल है, यहाँ पर क्या है, टेक्नोलॉजी मिलती है बढ़िया वाले और नकली वाले सॉफ्टवेयर मिल जाते हैं, खुशी के सॉफ्टवेयर, संतुष्टि के सॉफ्टवेयर मिल जाते हैं यहाँ पर, पायलट कॉपी 50 रुपए। एक बार हमारी कंपनी में एक व्यक्ति आया था, बाहर से आया, उसने सीडी देखी हमारे डेस्क पड़ी हुई थी, उसमें लिखा था विंडोज एनटी /2000/XP/Vista। ये क्या सीडी है? मैंने कहा ये सिर्फ इंडिया में मिलती है, बाहर नहीं मिलेगी बेटे। कितने की? 50 रुपए सारे जो डालना डालना, 10 रुपए का है विंडोज। तो पायरेटेड कॉपी, संतुष्टि की जो पायरेटेड कॉपी है वो इस जगह पे मिल जाती है। तो असंतोष की भावना जो है यहां पर हमेशा बनी रहती है। ऐसे एक बार एक राजा था, वो अक्सर भेस बदल के जाया करता देखने के लिए कि ना कि प्रजा में सब सुखी है, सब ठीक ठाक चल रहा है। तो वे मंत्री के साथ जाया करता था तो देखने के लिए सब ठीक ठाक चल रहा है। तो उसने ना एक बार एक ब्राह्मण को देखा और ब्राह्मण जो है बड़ा संतुष्टि का जीवन है उसका। तो उसने मंत्री से पूछा कि ना मैं राजा हूं, मेरे पास इतना कुछ है, मैं संतुष्ट नहीं हूं, लेकिन ये ब्राह्मण जो है ना बड़ा संतुष्ट है, ऐसा क्यों? तो मंत्री ने कहा कि जहां बना ये 99 क्लब का मेंबर नहीं है अभी, इसीलिए सुखी है। अच्छा, वो क्या होता है? जहां बना मैं अभी आपको प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखाता हूं जहां बना। तो अगले दिन जब ब्राह्मण जब कुटिया के बाहर आया तो उस वहां पर एक संदूक रखा था, संदूक खोला, उसमें थे सोने के सिक्के। अरे सोने के सिक्के, काउंट करने शुरू किए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 91, 92, 93, 95, 96, 98, 99। अगर एक सोने का सिक्का और आ जाएगा तो हम कह सकते हैं हमारे पास 100 सोने के सिक्के हैं, हमें बोल सकेंगे ना फिर। तो इसीलिए ना एक सोने का सिक्का और आ जाए बढ़िया है। तो एक सोने का सिक्का कैसे आएगा? तो जमींदार के पास गए ये ब्राह्मण। तो ब्राह्मण ने कहा कि अच्छा बताओ मुझे सोने का सिक्का अगर चाहिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा? क्या 6 घंटे अगर आप ये बोरियां यहां से वहां करोगे अनाज की ना, तो एक हफ्ते बाद मैं आपको एक सोने का सिक्का दे दूंगा। क्या ठीक है? तो उसने जो है एक हफ्ता बहुत मेहनत की, बोरियां यहां से वहां करनी शुरू कर दी और फिर इसको एक सोने का सिक्का मिला, इसे संदूक में डाला और फिर से काउंटिंग शुरू की, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 94, 95, 96, 97, 98। तो फिर से जमींदार के पास गया, जमींदार से कहा कि अच्छा अगर मैं 12 घंटे काम करूं तो मुझे एक हफ्ते बाद तुम 200 सोने सिक्के दे दो। कहता हाँ। अब इस ब्राह्मण ने 12 घंटे काम करना शुरू कर दिया। तो मिनिस्टर ने कहा जहां बना अब ये भी 99 क्लब का मेंबर हो गया है, इसकी सुख शांति खत्म हो गई है। इसी तरह से संसार में लोग जो है ये 99 क्लब के मेंबर बने हुए हैं और इसीलिए हमेशा असंतोष की भावना बनी रहती है। लाइक कॉर्पोरेट सेक्टर जहां पर लोग काम करते हैं, अब बोला गधा कैसे चलता है, जो गधे का मालिक होता है उसको है चलाता है, उसे आगे ना एक गाजर लटकाता है ऐसे करके और फिर गधे को लगता है कि ना मैं 2 कदम चलूंगा तो ये गाजर मेरे मुंह में आ जाएगी और फिर 2 कदम चलता है लेकिन गाजर भी आगे चल जाती है क्योंकि ऐसे डंडे से रखी हुई है ना, तो चलता है फिर और आगे चली जाती है और आगे चली जाती है और आगे चली जाती है। तो इस तरह से गाजर जो उसके मुंह में आती है लेकिन गधा हमेशा चलता रहता है। तो कॉर्पोरेट सेक्टर में भी कोई जाता है, एग्जीक्यूटिव है, ठीक है, उससे पूछो उससे तेरे को सीनियर एग्जीक्यूटिव बनना है, क्यों बनना है तेरे को? कहता है वो हो जाऊंगा मैं संतुष्ट हो जाऊंगा, संतुष्ट हो जाऊंगा उसके बाद। कहता अच्छा वेरी गुड, अच्छा संतुष्ट हो जाएगा, अच्छा अगर कोई संतुष्ट हो जाए तो क्या वो आगे बढ़ सकता है? कहता नहीं, तो संतुष्टि को बोलो ना और आगे बढ़ो। अच्छा आगे क्यों बढ़ रहे हो तुम? संतुष्टि के लिए, संतुष्टि के लिए, ठीक है ओके आगे बढ़े। अच्छा लेकिन अगर आप संतुष्ट हो जाते हो तो क्या आप आगे बढ़ सकते हो? नहीं, तो संतुष्टि को ना बोलो और आगे बढ़ो। कहते अच्छा अब आप सीनियर मैनेजर बन गए, अच्छा लेकिन अब आगे क्यों बढ़ रहे हो? संतुष्टि के लिए। अच्छा लेकिन अगर कोई संतुष्ट हो जाए तो आगे बढ़ सकता है? नहीं, तो संतुष्टि को ना बोलो और आगे बढ़ो। अच्छा लेकिन आगे क्यों बढ़ रहे हो? संतुष्टि के लिए, संतुष्टि के लिए। अच्छा लेकिन अगर आप संतुष्ट हो तो आप आगे बढ़ पाओगे? नहीं, तो संतुष्टि को ना बोलो आगे बढ़ो। अच्छा लेकिन क्यों बढ़ रहे हो आगे? संतुष्टि के लिए। अच्छा लेकिन अगर आप संतुष्ट हो तो आप आगे बढ़ पाओगे? नहीं, तो संतुष्टि को ना बोलो बंदा सीईओ बन जाता है, ठीक है, अब कंपनी फाड़ते निकलेगा नहीं ऊपर से, है ना, अब सीईओ बन गया भाई साहब, फिर वो एक कंपनी से दूसरी कंपनी में भागता रहता है, लेकिन संतुष्टि की गाजर उसके मुंह में आती नहीं है। इसको बोलते हैं गधे की जिंदगी। कॉर्पोरेट लाइफ है गधे की जिंदगी। लेकिन किस भावना में हम लोग करते हैं, आपको ये जानना है, बकरी है वो भी कॉर्पोरेट लाइफ में काम करते हैं, ऐसे नहीं वो गधे हैं। तो किस भावना में हम लोग कर रहे हैं? तो अगर हम संतुष्टि ढूंढते हैं अपने कार्यकलापों में, अपने कर्तव्यों में, तो वहां पर हमेशा असंतोष की भावना बनी रहेगी। जैसे एक व्यक्ति था, उसने एक साधु, एक संत आ गया है, बहुत टेंशन में था, उसने बोला स्वामी जी शांति क्या चाहिए तुमको? उसने बोला आई वॉन्ट पीस। तो साधु ने कहा कि पहले दो शब्द हमें समझ में गड़बड़ी है, आई और वॉन्ट। आई का मतलब अहंकार, वॉन्ट का मतलब तृष्णाएं। तो जब तक ये अहंकार रहेगा, जब तक ये तृष्णाएं रहेंगी ना, पीस मिलेगी नहीं। तो आई और वॉन्ट हटा दो, क्या बचेगा? पीस। इफ यू आर सेइंग आई वॉन्ट पीस, इसमें आई और वॉन्ट को हटाना पड़ेगा तो बचेगी पीस। अहंकार और तृष्णाएं ये व्यक्ति को हमेशा जलाती रहती हैं, और हमेशा नहीं तो आगे बढ़, ढूंढ इस संसार में आनंद, ढूंढ मिल जाएगा तेरे को, अभी तो असंतुष्ट है लेकिन तेरे को एक दिन आनंद मिलेगा। इसलिए संसार में जो है सारे क्रियाकलाप संतोष को ढूंढने में लग जाता है व्यक्ति। ऐसे इंडियंस हैं, उनको संतुष्ट लगता है कि ना अगर हम यूएसए चले जाएंगे ना तो खुश रहेंगे, बड़ा एनवायरमेंट है वहां पर, अच्छा वहां ग्रीनरी वगैरह भी है। ये इंडिया तो ऐसी पोल्यूटेड जगह है, इतनी करप्ट जगह है, तो अमरीका में सेटल हो जाए बहुत अच्छा रहेगा। और अमरीका वाले सोचो होगा जाए थे, कहते लेट्स गो टू इंडिया, इट्स पैथेटिक हॉलो शैलो प्लेस, लेट्स गो टू इंडिया। तो वो लोग जो है खुशियां ढूंढने के लिए इंडिया आते हैं, इंडिया वाले जो है अमेरिका भागते हैं। ओके, इंडियंस है वो रशियन की पीछे भागते हैं, रशियन अच्छा कंट्री है, कि अगर मैं किसी शादी करूंगा तो किसी रशियन से करूंगा, ऋषियों से आई है रशियन, तो करेंगे अगर वहां करेंगे तो किसी रशियन से करेंगे, then I will be very happy। और रशियन को बता रहे सब बेकार है, रशियन बता रहा हूं ये इंडियन अच्छे होते हैं, सीधे साधे लोग होते हैं। तो इस तरह से यहाँ के वहां खुशी ढूंढते हैं, वहां वाले यहाँ खुशी ढूंढते हैं। एक आम इंसान को लगता है बिल गेट्स बड़ा खुश होगा, और बिल गेट्स सुनता है कहता है कि नहीं नहीं आम व्यक्ति जो कितना खुश है, मैं ऊपर हूं लेकिन कितना अकेला हूं, कोई मेरे से संबंध बनाता है तो इसलिए बनाता है क्योंकि ना मैं बिल गेट्स हूं, इसलिए बनाता है कि मैं एक व्यक्ति हूं। और एक आम आदमी का सोचता है जितना बिल गेट्स बन जाएंगे ना हम संतुष्ट हो जाएंगे, और बिल गेट्स सोचता है मैं एक आम आदमी होता ना कितना संतुष्ट होता है। तो इस तरह से जो है हम लोग तृष्णाओं के पीछे भागते रहते हैं। आउटलुक मैगजीन है, आउटलुक मैगजीन में देयर वाज वन सर्वे, बड़ा एक्सपोजिंग सर्वे था, बड़ा हेवी ड्यूटी सर्वे था। इट मेंशन कि ना जो इंडियंस हैं, जो इंडियन सर्वर हैं, यहां पर जो लोग पोर्नोग्राफी देखते हैं इंडिया के अंदर, वो ना वेस्टर्न पोर्नोग्राफी को प्रेफर करते हैं कि ना जो इंडियन बॉडीज हैं तो घटिया बॉडीज हैं, जो वेस्टर्न पोर्नोग्राफी है ना वो है ना दैट इज द बेस्ट। तो इस तरह यूरोपियन और अमेरिकन पोर्नोग्राफी देखनी चाहिए, और यूरोपियन सर्वर्स पे और वहां देखा जाता है वो एशियन सर्वर्स की जो एशियन पोर्नोग्राफी होती है, ये सफेद चमड़ी तो बेकार है, ये जो व्हीटिश कलर की चमड़ी है ना उसके अंदर सुख है वास्तव में। तो जिनकी व्हीटिश चमड़ी है यानी काली चमड़ी है अगर, वो सफेद चमड़ी के अंदर आनंद ढूंढते हैं, और जो सफेद चमड़ी वाले हैं वो काली चमड़ी के अंदर या एशियन चमड़ी के अंदर आनंद ढूंढते हैं। तो ये वहां की पोर्नोग्राफी देखते हैं, वो वाले यहां की पोर्नोग्राफी देखते हैं, लेकिन दोनों जो है सुख की अभिलाषा में है कि उसमें सुख मिलेगा, नहीं उसमें सुख मिलेगा। जो स्त्री है वो पुरुष में सुख देखती है, और पुरुष है वो स्त्री में सुख देखता है, लेकिन दोनों के दोनों मांस के थैले हैं और कुछ नहीं। तो एक थैला दूसरे थैले में देख रहा है कि तेरे में बहुत खुशियां होंगी, लेकिन वो थैला खुद दूसरे थैले में ढूंढ रहा है कि शायद तेरे में खुशियां होंगी। तो इस तरह से दो भिखारी अगर एक दूसरे को लूट करके करोड़पति बनना चाहें, बिल्कुल वैसा ही हाल इस संसार के अंदर है, स्त्री और पुरुष है ढूंढ रहे एक दूसरे के अंदर खुशी कि ना अगर मांस अगर ऐसा अगर फ्लैश अगर ऐसे ट्रांसफॉर्म होता है ना उसमें खुशी मिल जाएगी, लेकिन वो सोच रहे नहीं अगर फ्लैश ऐसे ट्रांसफॉर्म हो ना तो उसमें खुशी होगी, लेकिन ये तो प्रोटीन है, प्रोटीन में खुशियां मिलने वाली तो है नहीं। थोड़ा निचोड़ के देखें इस प्रोटीन को, अपने प्रोटीन को निचोड़े जा रहे ऐसे खुशियां आ रही है मुझको तो नहीं आ रही, लेकिन कोई और सोचेगा इसमें खुशी होगी, इस प्रोटीन के अंदर खुशी अवश्य मिलेगी। और इस प्रकार से सेक्स लाइफ का पागल बने संसार में चलता रहता है क्योंकि हम चमड़े के अंदर खुशियां देखते रहते हैं। चमड़े से कौन डील करता है? मूंछी। इस संसार हम लोग क्या है? मूंछी। इसलिए हम लोग हमेशा है मूंछी, हमेशा हम लोग है गंदे रहते हैं। क्यों? हम लोग अस्वच्छ रहते हैं। क्यों? क्योंकि चमड़े से ही सब कुछ लेना देना है हमको। तो चमड़े के अंदर जो है व्यक्ति संतोष होता है संसार के अंदर। कभी इंडियन चमड़ा, कभी विदेशी चमड़ा, इंपोर्टेड चमड़ा, देसी चमड़ा, पर चमड़े के अंदर तो खुशी आएगी। प्रोटीन है, इट्स जस्ट अ बैग ऑफ प्रोटीन, दैट्स इट। असंतोषी भावना। एलेक्जेंडर का ही कहना था, एलेक्जेंडर जो थे उन्होंने बोला जब अपनी फैग एंड ऑफ लाइफ में थे तो उन्होंने ये डिक्लेयर किया कि अब मैं मरने वाला हूं, तो मैं जब मरूं तो ना ताबूत के बाहर मेरे हाथ ऐसे लटका के रखना, और जिस रास्ते से हम लोग जाएंगे उस रास्ते पे ना मेरी सारी दौलत बिछा के रखना, और जब मेरा फ्यूनरल चलेगा तो मेरा जो ताबूत होगा तो जिनके कंधों पे मेरा ताबूत जाए वो होंगे मेरे डॉक्टर, मेरे चिकित्सक, मेरे फिजियोथेरेपिस्ट, इन सबको ना ये इनके कंधे पे जो है मेरी लाश जानी चाहिए, मेरा ताबूत जाना चाहिए। और इस तरह से मौजूद ताकि लोग जाएं, लोग देखें कि अलेक्जेंडर दी ग्रेट गया तो खाली हाथ गया, और ये चिकित्सक भी मिलकर के इसको मृत्यु से नहीं बचा सके, और ये सारा धन जिसके लिए इतना पाप किया था अलेक्जेंडर दी ग्रेट ने, उसकी औकात तो ये है कि तेरे को जो है ये रास्ता रास्ते पे सजा हुआ है कि आपको जो है मृत्यु कहां पे लेके जाए, तो संसार में इसीलिए जो हम पाते भी हैं उसका वैल्यू क्या है। ऐसा अक्सर आपने देखा होगा कि ना कुत्ते जो होते हैं ना वो गाड़ी में से भागते हैं, गाड़ी जा रहे थे पीछे पा, 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 पा। तो हमारे यहाँ व्यक्ति है, हमारे ना द्वारका मंदिर के वहां वहां पर ना कुत्तों को खिलाता है, सो बिस्किट वाला खिलाने बड़ा शौक है कुत्तों को। तो किसी भक्त ने पूछा, कहते हैं आप ये जो कुत्ते इनको खिलाते हो ये ऐसे गाड़ियों में से भागते हैं तो क्या साक्षात्कार क्या आपका? कहते हैं बड़ा अच्छा साक्षात्कार है, कहते हैं कुत्ते कभी संतुष्ट नहीं है, और कभी खुदा ना खासा मान लो कभी किसी गाड़ी को छू भी नहीं उस गाड़ी का करेंगे क्या? तो हमारा जीवन में संसार में कुत्ते के जैसा ही है, विषयों के पीछे भागते रहते हैं भागते रहते हैं, लेकिन वो विषय मिल भी जाए तो करेंगे क्या, क्या करेंगे उसे दर कुत्तों मार लेंगे उसे दर। तो इसीलिए संसार में हमारी स्थिति जो है वो कुत्ते से भी वैसे होता है, जन जन कुत्ते में बुद्धि नहीं है तो वो कुत्ते का जीवन बिता है, हमें बुद्धि होते हुए हमने जो है कुत्ते का जीवन चुना है। तो इसीलिए ये हमारी हालत है संसार के अंदर। तो अब ये असंतोषी भावना बड़ा आती क्यों है? असंतोषी भावना वैसे आती है अनकंट्रोल डिजायर से, इच्छाएं बहुत बहुत जब होती है ना तो वो संतोष लाना बड़ा मुश्किल होता है। तो एक कारण यह है कि इच्छाएं, इच्छाओं की पूर्ति, क्या अगर हमारे पास अगर ऑटो थी तो एक दिन 1000 हो जाएगी, एस्टीम हो जाएगी, जब एस्टीम हो गई है तो हम स्कॉडा लेके आएंगे, स्कॉडा लेके आएंगे, स्कॉडा में हम कौन सी लेके आएंगे, रैपिड लेके आएंगे, रैपिड के बाद कौन सी लेके आएंगे, सुपर लेके आएंगे, सुपर के बाद मर्सिडीज लेके आएंगे, और इस तरह से जो है व्यक्ति की इच्छाएं कभी भी पूरी होती है, और जो इच्छाएं वो चाहता भी पूरी करने के लिए उसे भी अपना स्वार्थ देता है वो। देखिए अगर हम आपके इस्कॉन मंदिर में अगर हम डोनेशन दें तो क्या ATG बेनिफिट्स हैं, इनकम टैक्स बेनिफिट्स हैं कि नहीं उसके अंदर? नहीं है ना, फिर छोड़ करके नहीं है ना, लेकिन यहाँ किसी और जगह दान और क्या। तो इसीलिए वो दान देते हुए व्यक्ति व्यक्ति जो है अपने संतोषी भावना को ढूंढता रहता है। और क्या पार्शल ब्लाइंडनेस एक और कारण है असंतोष का, कि हम व्यक्ति के अंदर जो है जो गुण है उसको नहीं देख पाते, लेकिन सिर्फ अवगुण को देख पाते। अगर पति पत्नी में सिर्फ अवगुण ही देखता है, जिसमें गुण है वो नहीं देखता, तो भी असंतोषी भावना बनी रहेगी। मेरे आसपास जो भक्त हैं उनमें मैं गुण नहीं देख पाता तो भी असंतोषी भावना बनी रहेगी। मुझे एक भक्त मिला था हमारे दिल्ली NCR में, द बेस्ट टेम्पल का मिला था भक्त, कहता प्रभु मैं ना संतुष्ट नहीं हूं, आई एम नॉट सेटिस्फाइड। तो मैंने उसे कहा ठीक है इस्कॉन अंडमान निकोबार जा तेरे को पता लगेगा तेरे को क्या मिल रहा है, जो तेरे को यहां मिल रहा है वो तो कह रहा है मैं संतुष्ट नहीं हूं यहां पर, जबकि यहां पर इतनी एजुकेशन है, इतनी ट्रेनिंग है यहां पर, इवन देन अगर तू असंतुष्ट है, दिल्ली का वन ऑफ द बेस्ट टेम्पल है, अरे बता दे इस्कॉन पे जाइए, इट इज द बेस्ट टेम्पल इन इस्कॉन डेरी, और मतलब भक्ति विधामाना का हम चर्चा करते हैं एक्चुअली दुनिया का बेस्ट टेम्पल है इसको मन जाएगा, बेस्ट यूथ टीचिंग, बेस्ट कांग्रीगेशन, बेस्ट बुक डिस्ट्रीब्यूशन, बेस्ट ब्रह्मचारी, बेस्ट कांग्रीगेशन, ये असंतुष्ट है वहां पर, और कहां जाएगा तुम्हें ना, इसको लक्षद्वीप भेज दो इसको, जहां पर बंदा परिंदा नहीं है ना, जहां दो माला करने वाला भक्त नजर आएगा उसको तब पता लगेगा। तो हम जब अच्छे गुण देख ही नहीं पाते, जिस वातावरण में हम हैं, जिसके साथ हम हैं, जो परिस्थितियां हैं हम नहीं देख पाते, So this partial blindness leads to dissatisfaction. ये एक और कारण है, एक है इच्छाएं, दूसरी है partial blindness, दूसरा है wrong expectations. गलत expectations हम सेट करते हैं ना तो भी हम असंतुष्ट रहते हैं. मान लीजिए किसी गुरु महाराज है, बहुत ट्रैवलिंग है उनकी, 20-25,000 उनके डिसाइपल्स हैं. अगर गुरु महाराज जी अब हमारे घर में आए बैठे, हम उनको अपने हाथों से खिलाए, अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन. बिल्कुल, जब मैं दुखी था कोई मेरे पास गया, कोई बोलता प्रभु जी ठीक हो, किसी ने मेरे साथ किया ही नहीं, अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन. अरे इतने बड़े हो गए यार, अभी तुम सही थी, ये तो करके मानता. अरे दुखी हो जाके पक्ष शेयर कर लो, बिल्कुल मैं साथ में, आई एम नॉट सैटिस्फाइड यार, आई नीड काउंसलिंग. कम ऑन, कम टेक काउंसलिंग, दैट्स फिनिश. मेरा किसी ने ध्यान नहीं रखा, मैं बीमार था, किसी ने पूछे प्रभु जी बीमार हो, गोली खा लो, मुझे क्या हो, पैर अभी कोर्ट से निकले बच्चे हो. अभी अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन होने के बाद होता क्या है, हम लोग असंतुष्ट रहते हैं. ये तीसरा कारण है असंतोष का. और कारण है इग्नोरेंस, अज्ञानता. जब ये नहीं जानता कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं तो आत्मा हूं, तो शरीर को तुष्ट करने में वो अपना जीवन बिताया था, लेकिन वो कभी भी तुष्ट नहीं हो पाता. अज्ञानता, हमारे अस्तित्व की अज्ञानता, ये भी असंतोष का कारण बनती है. और क्या, कंपैरिजन मेंटालिटी, कंपैरिजन से भी असंतोष आता है. कंपेयर करें, पता है वो जो है ना वहां पर जो उनके लीडर है ना, वो तो कीर्तन मेला में गाते भी है, तुम्हारा लीडर तो कीर्तन मेला में गाते नहीं है. वो जो है ना फला फला महाराज, वो तो यात्रा में लेके जाते हैं. हमारे मेरे गुरु महाराज तो यात्रा में जाते हैं, वो उसमें भी जीबीसी मीटिंग बिजी हो जाते हैं. कंपैरिजन मेंटालिटी, जहां पर कंपैरिजन आएगा वहां पर असंतोष आएगा, कि वो कितना अच्छा खाना बनाती है, तुम्हें सड़ी रोटियां बनानी तुम्हें को है, कसे ठप्पा मार मार के इतनी साल रोटियां बनाते हो, आज तक तुम्हारी ढकी रोटी ना बनी तुमसे. उनको देखो, मिसेस गुप्ता को देखो, मिसेस छावड़िया को देखो, कितने अच्छे पराठे बनाती है वो. कंपैरिजन मेंटालिटी, उन्होंने देखो कितना दिया, अपनी वाइफ का कितना ख्याल रखते हैं, वीकेंड पे उनको मंदिर लेके जाते हैं मंगल आरती. आप तो सुबह उठते नहीं हो, काम चोर. आप भक्ति नहीं, आप कम भक्त हो, बल्कि कम भक्त हो आप. उनको देखो कितने अच्छे हो, आप कैसे हो, वो देख कितनी अच्छी है, तू कैसी है चुड़ैल. कंपैरिजन, तो कंपैरिजन से भी जो है असंतोष आता है. गुरु को कंपेयर किया, वैष्णव को कंपेयर किया, पति को कंपेयर किया, पत्नी को कंपेयर किया. वो बच्चा जो मार्क्स लेके आ सकता है तो तू भी ला सकता, तेरी अंक किसे भरते हैं. जब नरेश जब नंबर वन आ सकता, तू भी आ सकता. गंदा भैया पेंटियम वन प्रोसेसर वाला असंतोष, कंपैरिजन से भी असंतोष आता है. तो इस प्रकार से और एक और चीज है जो कि असंतोष लेके आती है, वो है कंट्रोल, कंट्रोलरशिप. जितना ज्यादा हमारा नियंत्रण करने की भावना आएगी ना, उतना ज्यादा असंतोष आएगा. नियंत्रण तो कृष्ण है, उनके रोल में घुसोगे तो पिटाई तो होगी होगी भाई. असंतोष से भी आता है कंट्रोलरशिप. और संतोष किससे आया, इस बात को समझना कि वो क्या मेरे वश में है और क्या मेरे वश में नहीं है. जो मेरे वश में है उसके लिए चिंता मुझे करनी नहीं चाहिए, और जो मेरे वश में है उसकी चिंता नहीं करनी, जो मेरे वश में नहीं है उसकी चिंता मुझे नहीं करनी. तो फिर चिंता में क्यों करता हूं फिर. तो यानी कि असंतोष की भावना वास्तव में एक इल्यूजन है. बिकॉज दैट विच आई कैन कंट्रोल आई शुड नॉट वरी अबाउट, एंड दैट विच आई कैन कंट्रोल आई शुड नॉट वरी अबाउट. जब दो ही तो चीजें संसार के अंदर, तो हमें भगवान से मांगना चाहिए कि प्रभु मुझे बुद्धि दे कि मैं देख सकूं क्या मेरे वश में है और क्या मेरे वश में नहीं है. जब ये बुद्धि आ जाती है तो कभी असंतोष की भावना आएगी ही नहीं. तो उसके लिए कृष्ण भावना का होना बड़ा जरूरी है. मैं क्या था अभी एक एचआर समिट में, तो वहां उसने पूछा कि आप बोल रहे हैं कृष्णा कॉन्शियसनेस, गॉड कॉन्शियसनेस, भक्ति, ये वो, अगर सारे लोग कॉर्पोरेट में कृष्णा कॉन्शियस हो गए तो ये कॉर्पोरेट वर्ल्ड का क्या होगा फिर. तो मैंने उसको यही बताया, मैंने कहा अच्छा आपके ऑफिस में पॉलिटिक्स है, बॉल है. मैंने कहा अच्छा पॉलिटिक्स कौन लोग खेलते हैं, संतुष्ट लोग या असंतुष्ट लोग. कहते हैं संतुष्ट लोग, असंतुष्ट लोग खेलते हैं पॉलिटिक्स. मैंने कहा कितना अच्छा होगा जब सब कृष्ण कॉन्शियस होंगे तो सबके सब बड़े संतुष्ट होंगे और तब कोई पॉलिटिक्स होगी नहीं. कितना अच्छा होगी व्यक्ति बोले आप मेरे को प्रमोशन दीजिए, आप इसको प्रमोशन दीजिए, अच्छा आदमी और बोले नहीं 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 जी मेरे को क्या ये मेरे से अच्छा है इसको प्रमोशन दीजिए। कंफ्यूजन अब ये है कि ये बोल रहा है इसको तो ये बोल रहा है इसको। वाओ वैकुंठ एनवायरनमेंट क्या हम कि कॉर्पोरेट लाइफ का वैकुंठ है। अरे आपने तो बड़े सुंदर सपने दिखा दिए हमको। मैं कहा ये सपना ही है क्योंकि कॉर्पोरेट लाइफ में क्या है नोबडी कोऑपरेट इसीलिए ऐसे ही रह गया जनाब। सो पॉलिटिक्स कौन खेलता है? असंतुष्ट व्यक्ति ही पॉलिटिक्स खेलता है राइट। और अगर सामने वाला पॉलिटिक्स खेल रहा हो तो हम क्या करें? जो संतुष्ट है ना उसको पॉलिटिक्स का प्रभाव पड़ना नहीं। इनफैक्ट उसको ये तो होश नहीं होता नहीं कोई पॉलिटिक्स भी खेल रहा है। कोई उसको बताया सुनो प्रभु जी बताए कितनी पॉलिटिक्स चल रही है? कहां चल रही है? प्रसाद चल रहा है, हरि नाम संकीर्तन चल रहा है, हरि कथा चल रही है, बुक डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा है, पॉलिटिक्स तो नहीं चल रहा है। कहां पॉलिटिक्स? आप देख नहीं पा रहे हो, आप अंधे हो। अबे तू अंधा हो गया बेवकूफ। जैसे कैटरेक्ट हो जाता है तो हम अलग अलग रंग को कोई और रंग में देख लेते हैं या कलर ब्लाइंडनेस किसी को हो जाए। तो जब असंतुष्ट आंखें किसी की होंगी ना वो हमेशा ऐसी दिखेंगी। लेकिन जो संतुष्ट रहने व्यक्ति अपने आप में बड़ा पूरा हो चुका है क्या पॉलिटिक्स? देयर इज नो पॉलिटिक्स। मेरे ऑफिस में ना कोई पॉलिटिक्स नहीं है, घर में ना नो पॉलिटिक्स, मंदिर में नॉट ऑल, हां बिल्कुल वैकुंठ है, नो पॉलिटिक्स। तो पॉलिटिक्स के रडार जिसने रखे हुए हैं वो ही पकड़ता है पॉलिटिक्स को और ऐसा व्यक्ति हमेशा असंतुष्ट रहता है। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि जो व्यक्ति संतुष्ट है उसको पॉलिटिक्स का प्रभाव पड़ता नहीं और जो असंतुष्ट है वो हमेशा पॉलिटिक्स में लगा रहेगा। सामने वाली पॉलिटिक्स दिखेगा फिर कहेगा मैं भी कुछ खेल लूं और इस तरह से जो है अपना जीवन हो बेकार कर लेता है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन भगवान ने दिया है भगवद गीता के 17वें अध्याय के 16वें श्लोक के अंदर, जहां पर भगवान कह रहे हैं कि ना मन की तपस्या क्या क्या है। मन की तपस्या में पहला जो शब्द है वो है मन प्रसाद, यानी कि संतुष्टि। मन प्रसाद अच्छा है कि ये संतुष्टि वाला कैसे आती है? तो अगला शब्द भगवान ने इस्तेमाल किया सौम्यत्व, यानी कि अगर इफ यू आर फ्री फ्रॉम डुप्लिसिटी, अगर आप किसी प्रकार की डुप्लीशन भावना से कपट की भावना से मुक्त हैं तो आपको संतोष आएगा। अच्छा डुप्लिसिटी, अच्छा डुप्लिसिटी कैसे मतलब इसको कैसे इससे कैसे बचा जाए? तो अगला शब्द फिर भगवान ने सवाल किया मौनम, यानी कि गंभीरता से अगर हम गंभीर हो जाते हैं मौनम गंभीरता से। गंभीरता से हुआ क्या? गंभीरता से ना हमें डुप्लीशन नेचर हमारा चला जाएगा और डुप्लीशन नेचर जाएगा ना तो हम लोग संतुष्ट हो जाएंगे। अच्छा ग्रेविटी यानी सौम्यता सॉरी मौनम, अच्छा ये मौन ये जो ग्रेविटी है गंभीरता ये वाला कैसे आती है? तो उसके लिए फिर अगला शब्द हमारे इस्तेमाल किया आत्मविग्रह, यानी कि सेल्फ कंट्रोल अगर कोई व्यक्ति होगा तो मौनम होगा, मौनम होगा तो सौमत्व होगा, सौमत्व होगा तो मन प्रसाद यानी संतुष्ट होगा। कहता अच्छा आत्मविग्रह यानी कि अगर कोई सेल्फ कंट्रोल है, कहता लेकिन आत्मा ये सेल्फ कंट्रोल वाला कैसे होगा? तो उसके लिए फिर भगवान ने अगला शब्द इस्तेमाल किया भाव संशुद्धि, यानी कि हमारी भावनाओं में की संशुद्धि होना बड़ा आवश्यक है। जब भावनाओं की संशुद्धि होगी तो उससे क्या होगा? हम सेल्फ कंट्रोल हो पाएंगे, सेल्फ कंट्रोल हो पाएंगे तो ग्रेविटी आएगी, ग्रेविटी आएगी तो डुप्लीशन से हम फ्री हो पाएंगे और फिर संतुष्टि की भावना का हम अनुभव कर पाएंगे। तो इस प्रकार से एतत् तपो मानसम उच्यते, तो ये तपस्या है मन की, संतुष्टि जो है ये मन की तपस्या है कि हर परिस्थिति में संतुष्ट रहना, संतुष्ट रहना। और भगवान गीता में कह रहे हैं कि जो कोई संतुष्टि नहीं है वो भला खुश कैसे रह सकता है? तो खुशी का अनुभव करने के लिए संतुष्ट रहना बड़ा आवश्यक है। लेकिन भक्ति में सेवाएं करते हुए भगवान की भगवान को प्रसन्नता देने के को लेकर के हमेशा असंतुष्ट रहना चाहिए, असंतुष्ट रहना चाहिए। लेकिन कहां रहना चाहिए? भगवान को संतोष देने में हमेशा असंतुष्ट रहना चाहिए कि ना भगवान की और सेवा कर सकते। जैसे प्रभुपाद जी ने पूछा कि प्रभुपाद जी देखिए अब आप बूढ़े हो गए हैं, बुजुर्ग हो गए हैं, अब थोड़ा ट्रैवलिंग थोड़ी कम कर दीजिए, बुजुर्ग हो गए आप, इतने सारे आपके शिष्य हो गए थे पाओ भाई बन जा सकते। तो प्रभुपाद जी ने कहा इट्स माय प्रिविलेज टू स्ट्रगल फॉर कृष्ण, कृष्ण के लिए संघर्ष करना ये मेरा सौभाग्य है, मेरा सौभाग्य कि मैं कृष्ण के लिए संघर्ष करना। एंड आई विल नॉट स्टॉप ट्रैवलिंग बिकॉज आई एम टू स्टॉप योर ट्रैवलिंग इन 14 प्लैनेटरी सिस्टम्स, आई एम टू स्टॉप योर ट्रैवलिंग इन 84 लाख स्पीशीज ऑफ लाइफ, इसे मुझे करना है और करना है। इसे प्रभुपाद जी आखिरी समय में भी हैं, इन हिज लास्ट फाइनल पास टाइम्स, तो प्रभुपाद जी भागवत को ट्रांसलेट कर रहे हैं, यानी कि आप देखो मैंने जितना कर दिया ना अभी कुछ चैन की सांसें लेने दो मेरे को। जो भक्त होता है वो हमेशा बेचैन रहता है कृष्ण के लिए सेवा करने के लिए, प्रभुपाद जी ने भक्त ने पूछा कि प्रभुपाद मैं सुबह मंगल आरती के लिए मैंने पुजारी की मेरी सेवा है तो मैं रात को बड़ी टेंशन में सोता हूँ, बड़ी एंजाइटी में सोता हूँ, सुबह उठना है। अब सुबह टेंशन नहीं उठाऊंगा तो नहाऊंगा कैसे, नहाऊंगा नहीं तो फिर मैं तैयार कैसे होगा, तैयार नहीं होगा तो मैं भगवान को उठाऊंगा, ऐसे भगवान को भोग लगाना होगा। सुबह 4:30 बजे फिर मंगल आरती दर्शन होने ठीक 4:30 बजे मैं सोता हूँ तो बड़ी एंजाइटी में सोता हूँ मैं। प्रभुपाद ने कहा दिस एंजाइटी इज कृष्ण कॉन्शियसनेस, ये एंजाइटी कृष्ण भावना है कि तुम ना तुम्हें क्या बेचैनी है कि कृष्ण की सेवा अच्छे से हो, तुम्हें बेचैनी है कि सुबह भक्तों को ना टाइम से मंगल आरती दर्शन हो, ये जो भावना है ये बड़ी उत्कृष्ट भावना है। तो इसीलिए कृष्ण भावना का जो लक्ष्य है वो शांति नहीं है, कृष्ण भावना का लक्ष्य शांति नहीं है, कृष्ण भावना का लक्ष्य प्रेम है, कृष्ण प्रेम। और इसके लिए व्यक्ति को अपनी शांति को भी किनारे करने के लिए तैयार रहना चाहिए। जैसे कि मान लो हम किसी मंदिर में वेरी वेल सेटल्ड और गुरु कहे कि ना मैं सोच रहा था कि ना तुमको उस मंदिर में वहां प्रचार के लिए भेज दूं, अभी वहां कुछ भी नहीं है, वहां पर बस एक हट बनी हुई है ठीक है, और तुम वहां पर जाके ना सेवा करो। अरे यार महाराज क्या भेज रहे हैं मेरे को, ना कोई वहां भक्त है, ना बंदा ना परिंदा, मर जाऊंगा मैं, गुरु महाराज को इतनी अकल नहीं है मेरे को भेज रहे हैं, मेरे को ज्यादा अकल है, मेरे को गुरु से ज्यादा अकल है, तो गुरु वहां भेज रहे मेरे को नहीं जाना चाहिए। ये यहां पर संतुष्टि में इसका फॉलो होना होगा, यहां पर जो गुरु के लिए अपने संतुष्टि को किनारे कर देता है उसी को परम संतोष प्राप्त होता है, क्योंकि परम संतोष तो प्रेम के अंदर है। संतोष में संतोष नहीं है, कृष्ण प्रेम में संतोष है, और कृष्ण प्रेम का मतलब है कि मैं अपने संतोष को किनारे रखने के लिए तैयार हूं, और जब मैं संतोष को किनारे रखने के लिए तैयार होता हूं तो जो मुझको मिलता है उसी को असली संतोष कहते हैं। तो इसीलिए संतोष शांति मोक्ष ये जो है हमारे लिए ये लक्ष्य है, गौड़ी वैष्णव का लक्ष्य है। तो जो इसके पीछे है दैट पर्सन नॉट गौड़ी वैष्णव, गौड़ी वैष्णव जो है संतोष के पीछे नहीं भागता, वो कृष्ण प्रेम के पीछे भागता है, और कृष्ण प्रेम ही असली संतोष है। ये बेचैनी कृष्ण के लिए लेना, इसमें जो आनंद मिलता है ये तो वही जानता है जिसने कि संतोष को किनारे कर करके इस परम संतोष को प्राप्त किया है, ये तो सिर्फ वही जानता है। तो इसीलिए गुरु की प्रसन्नता के लिए कृष्ण की प्रसन्नता के लिए असंतोष को स्वीकार करना ये उत्कृष्ट शिष्य का लक्षण है। भक्ति सिद्धांत ठाकुर विश्वास ठाकुर कहते हैं A true disciple is the one who is ready to give up even pleasure of chanting and hearing for the to please the spiritual master. अपने गुरु को संतुष्ट करने के लिए श्रवण और कीर्तन से मिलने वाला सुख उसको भी जो किनारे कर दे वो है आपके शिष्य। हमको तो अभी श्रवण कीर्तन का भी आनंद नहीं आ रहा, तो उस लेवल पे नहीं पहुंचे, जो पहुंच चुका हो वो इसको त्याग दे गुरु की खुशी के लिए, उसको परम संतोष मिलेगा। विश्वनाथ चंद्र ठाकुर कहते हैं तो ये असली शिष्य। तो हमें अपने संतोष शिष्य नहीं बनना, हमें तो श्री प्रभुपाद जी और उनके अग्रणी शिष्यों गुरुजनों का इनका शिष्य बनना है, और उसके लिए संतोष को किनारे करने के लिए हमें तैयार रहना चाहिए। तो असंतोष को भी भगवान की सेवा में हमको लगाना चाहिए। ओके आज स्टॉप है, हरे कृष्ण। एनीबॉडी हैज एनी क्वेश्चन, वी विल टेक वन और टू क्वेश्चंस। किसी को सवाल है एक, किसी को सवाल है दो, सब संतुष्ट है, ग्रेट। यस बिल्कुल।
तो लेकिन ये भी कहते हैं कि जो हम कर्म कर रहे हैं उससे हमारा प्रारब्ध बनता भी है, तो फिर प्रारब्ध हम आगे कैसे कर्म करें जो प्रारब्ध बनाए और फिर वही कभी कर्म करें उसका प्रारब्ध हम भोग रहे हैं।
जो अभी हम कर रहे हैं इसका प्रारब्ध हमें आगे मिलना है, जो अभी अभी हमें मिल रहा है इसका हम ऑलरेडी कर सके। जो हम कांटों के बीच हमने बोए थे आज हम वो कांटों का पेड़ हमने संभाल रहे हैं, लेकिन हाँ कांटों को सहते हुए हम जो आज बीज बोएंगे भक्ति के तो वो जो आगे जाके प्रारब्ध के रूप में आएंगे हमारे जीवन में। तो आज जो हम कर रहे हैं इसका प्रारब्ध हमें बाद मिलेगा, लेकिन आज जो हम भोग रहे हैं इसका तो हम कार्यकलाप कर चुके हैं राइट। तो इसीलिए हमको संतुष्ट रहना चाहिए उस तरह से कि आज जो हो रहा है मैं तो बोझ पहुंच के बीच अभी इनको सहना है, अब ठाकुर जी से सहन शक्ति मांगो बस। तो हमें भगवान से ये मांगना चाहिए, अब तो चीज प्रारब्ध है, अभी हेल्थ है, जो हेल्थ है सो है, अब जो मेरी पत्नी है सो है, मेरा जो पति है सो है, चेंज तो कर सकते हैं है ना, कि रात को सोए तो उसको ऑपरेशन करके जो ब्रेन बदल दूंगी उसकी मैं, और अब जो है अब संगी पति लिखा था, संगी पति लिखनी है ये, तो यही है उजाड़ बच्चे लिखे थे क्या करता, यही है जो है सो है, पेट की बीमारियां लिखी थी नाम जो लिखा था भी जो है प्रार्थना वो पर लेकिन हाँ आगे का अच्छा बना है, इसके लिए नागलोई जाते आते हुए चैंटिंग हरे कृष्ण वापस आते आते भागवत है ना, तो क्या भविष्य ठीक है क्या समझ।
तो प्रभु जी ऐसे हम जो मैं ऐसे लेक्चर में सोच रहा था मतलब कितना सही हूँ, जैसे जब हम बाहर थे और काम भी करते थे और साथ में भक्ति भी करते थे तो ये चीज़ समझना ज़्यादा आसान होता है कि कैसे भौतिक चीज़ों के लिए असंतुष्टि गलत है और जो है वो मटेरियल लाइफ में संतुष्ट रहकर कृष्ण कॉन्शियसनेस को बढ़ाना चाहिए। लेकिन हम आश्रम में आते हैं सब कुछ ही भगवान के लिए गुरु के लिए होता है, तो ये मैं आपसे जानना चाहता था कि ब्रह्मचर्य आश्रम में क्या क्या कारण हो सकते हैं असंतुष्टि के और हम उससे कैसे ऊपर आ सकते हैं, कैसे आइडेंटिफाई कैसे करें कि दिस इज एक्चुअली नॉट स्पिरिचुअल डिससैटिस्फैक्शन मटेरियल डिससैटिस्फैक्शन।
ब्रह्मचारी असंतुष्ट होता है जब साधना में कॉम्प्रोमाइज करता है, साधना से उसको बहुत संतुष्टि मिलेगी, उसकी कितनी इच्छाएं हैं भगवान हरिनाम के रूप में आकर के सेटल कर देंगे उसको खुद को पता नहीं चलेगा। You never realize कि मेरी कब भगवान ने वासनाएं काट दी, कब मेरा क्रोध काट दिया, लोभ काट दिया, अहंकार काट दिया, भगवान ने उसको खुद को पता चलेगा। अनकॉम्प्रोमाइजिंग मॉर्निंग साधना ब्रह्मचारी के लिए मस्ट है, मस्ट है। अगर रिगड़ रिगड़ के भी आना पड़े तो करना चाहिए। तो दैट्स वन थिंग। सेकंड, वैष्णव अपराध, वैष्णव अपराध करेगा तो उसके बाद जो है उस अपराधों की वजह से ना असंतोष बढ़ जाएगा उसका, और असंतोष के रूप में आएगा क्या उसके जीवन में, उसी जीवन में ना उसको जो स्त्रियां हैं अच्छी लगेंगी, उनको माता के रूप में नहीं देख पाएगा वो, ठीक है। धन अच्छा लगेगा, धन की इंपॉर्टेंस बड़ी अच्छी लगेगी, फ्यूचर सिक्योरिटी, मैं बूढ़ा हो जाऊंगा मेरे को कौन खिलाएगा पिलाएगा, जो गृहस्थ है उसको फिर को देखने वाला है, उसके बच्चे देखने वाले हैं, मेरा कौन है, ना तो पत्नी ना तो मेरे बच्चे, बुढ़ापे मेरे क्या होगा, इस कौन वाले बोलेगा तू बूढ़ा हो गया बूढ़ा हो निकल जाते निकल जा, और फिर मैं सड़क पर पड़ाऊंगा, अभी से थोड़ा पैसा इकट्ठा करने शुरू करता हूँ, लेट मी गो फॉर माउस प्रोग्राम सॉरी हाउस प्रोग्राम, और वहां थोड़ा पैसा इकट्ठा करना शुरू कर देना चाहिए मेरे को। बैंक बैंक कौन सा बैंक बड़ी रिटर्न कौन देता है, यस बैंक, अच्छा यस बैंक अच्छे रिटर्न देता है, ठीक है ओके यस आई विल गो फॉर यस बैंक। सो फ्रॉम बैंक ऑफ यमुना से दूर चला जाएगा वो, यस बैंक में चला जाएगा बेचारा वो। तो ये वैष्णव अपराध। थर्ड है असत्संग, ब्रह्मचारी को जो है असत्संग से बचना चाहिए, चाहे वो गैजेट्स के रूप में हो स्मार्टफोन्स, लेकिन स्मार्टफोन में अगर वो उसका दुरुपयोग करेगा तो क्या करेगा वो गैजेट के माध्यम से संसार दर्शन करेगा, और संसार तो बड़ा ग्लैमरस है चकाचौंध वाला है, और तो व्यक्ति का असत्संग और गैजेट असत्संग इसके थ्रू भी जो है उसके अंदर तृष्णाएं बढ़ेंगी उसकी, और यार दुनिया इतनी बुरी भी नहीं है, मैं बाहर था वैसे मैं ये इसको ब्रेन वॉश कर लिया, बढ़िया दुनिया संसार अच्छा है, और फिर वो असंतोष को पूरा करने के लिए एक दिन आएगा और फिर मंत्री के अध्यक्ष से बोलेगा प्रभु जी मैं सोच रहा था कांग्रेगेशन टीचिंग करना शुरू करूं और उसके लिए मुझे कांग्रेगेशन डिवोटी बन जाना चाहिए। अब वो कांग्रेगेशन डिवोटी बने अच्छा है, लेकिन वो कांग्रेगेशन डिवोटी भी नहीं बन पाएगा, वो गृहवेदी बनेगा वो, क्योंकि वो वासनाओं को पूरा करने के लिए बाहर जाएगा, वो टीचिंग करने के लिए नहीं जा रहा है वो। तो इसीलिए ये तीन मेन कारण होते हैं ब्रह्मचारी के जीवन में असंतोष के। पहला है कॉम्प्रोमाइज साधना, उसको अनकॉम्प्रोमाइजिंग मॉर्निंग साधना रखनी चाहिए, अभी वेरी वेरी पक्का है साधना। Secondly, he should avoid वैष्णव अपराध, and thirdly, उसको असत्संग से बचना चाहिए। असत्संग both from living as well as non-living, living लोगों से भी ऐसे लोग भी होते हैं तो भोले वाले ब्रह्मचारी बताएंगे आओ प्रभु जी हरि बोल, आपके कपड़े देखो बड़े रूखे सूखे हैं, एक सिल्कन धोती कुर्ता मेरी तरफ से हो जाए इस बार गौर पूर्णिमा पे तो कैसा रहेगा, भोला वाला है वो पहन लिया उसे, इसके बाद सिर्क से नीचे जा नहीं पाए क्या, झूठ तो झूठ है सिर्फ ही असली है, फिर आएगा फिर और अच्छी पड़ी उसकी असत्संग। सो दैट इज, तो ये तीन तीनों से बचना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है उसके लिए असंतोष। एक और चीज भी होती है ब्रह्मचारी लाइफ में, ब्रह्मचारी शुड रिमेन एटलीस्ट ऑन इंटेलेक्चुअल प्लेटफॉर्म इफ नॉट स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म, एटलीस्ट ऑन इंटेलेक्चुअल प्लेटफॉर्म, क्योंकि इंटेलेक्चुअल के नीचे क्या है सेंसुअल प्लेटफॉर्म, सेंसुअल प्लेटफॉर्म तो उसके लिए तो यहां सुख सुविधा है नहीं एक्सेप्ट प्रसादम, और कोई सुख सुविधा नहीं है ब्रह्मचारी के लिए। सो ब्रह्मचारी शुड ऑलवेज सीक टू बी एटलीस्ट ऑन इंटेलेक्चुअल प्लेटफॉर्म, और स्पिरिचुअल दैट इज द बेस्ट. लेकिन अगर स्पिरिचुअल पे नहीं कम से कम इंटेलेक्चुअल प्लेटफॉर्म पे, सेंसुअल पे आया तो गया नाम से, क्योंकि सेंसुअल को पूरा करने के लिए तो फिर संसार है, विषय वस्तु में तो वहीं पर है. तो इन चीजों ध्यान रखना चाहिए. और ये चीजों ध्यान रखेगा, ब्रह्मचारी लाइफ इज सिल्की स्मूथ वेरी इजी. ये तो वैसे कुछ लोगों ने हवा बना के रखा है ब्रह्मचारी बनने को, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा. बहुत आसान है ब्रह्मचारी जीवन, सरल व्यक्ति के लिए तो बहुत ही आसान है, कॉम्प्लिकेटेड व्यक्ति के लिए ब्रह्मचारी जीवन एक जो है ना उसके लिए जेल है. अरे यार ये छोटे से कमरे में भेड़ बकरी इतना ठूस दिए हैं मेरे यार, मर रहे हैं. निकले यार यहां से, कब तक निकलूंगा, कब तक ऐसे फंसा रहूंगा यहां, जिंदगी भर में ऐसे ये 10 फीट by 10 फीट कमरे के अंदर मरता रहूंगा मैं, ऊपर से नीचे नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे नीचे से ऊपर, ये जिंदगी है. अब कैसे निकला जाए, बेस्ट तो रहेगा कि ना मंदिर वाले निकाल दे मेरे को. तो मैं बोल सकता मैं नहीं निकला, उन्होंने निकाला. तो कुछ ऐसा काम करना चाहिए मेरे को. अब ये क्या, ये कॉम्प्लिकेटेड बुद्धि के विचार है वापस. तो सरल व्यक्ति के लिए ब्रह्मचारी जीवन जन्नत से भी ज्यादा है, वैकुंठ है. लेकिन कॉम्प्लिकेटेड व्यक्ति के लिए ये जेल है. तो इसलिए कॉम्प्लिकेटेड व्यक्ति को क्या है, संसार में तो देखना चाहिए कि असली जेल क्या है. संसार जेल है, भक्तों के संग में तो ये तो सौभाग्य हमारा कि वैष्णव के साथ रह रहे हैं, उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं. मैं सुबह उठता हूँ तो मुझे भक्त के दर्शन होते हैं, मुझे उठाते तो भक्त उठाते हैं, किशोर राय को मुझे उठाते हैं. अरे वो अमोला बाबू आलसी आदमी उठ जा भाई, भक्त लाते जाना. तो वो उनकी आंखें जो खुलती है तो वो केशव राय प्रभु का चमकता चेहरा नजर आता है. हाँ सोते हुए नहीं, हरे कृष्णा प्रभु जी उठते हैं तो हरे कृष्णा. दिस इज सो नाइस, सो नाइस. सुबह शाम क्लासेस हैं, हरि कथा है, हरिनाम कीर्तन है, वाह क्या जीवन है. अब ये सरल बुद्धि वाला व्यक्ति तो सोच पाता है, कॉम्प्लिकेटेड व्यक्ति ये सब सोच नहीं पाता. उसको समझाओ भी ना अगर तो ये यार ये सब थ्योरी है, प्रैक्टिकल तो भाव बेटा बहुत प्रैक्टिकल. इसलिए भगवान इतनी सुंदर लेबोरेटरी बनी है संसार की, ऐसे जब स्ट्रॉ लगा ला के पिएंगे ना खून पिएंगे, जब सारा खून चुसा लेगा ना वो, तब पता लगेगा उसको बेटा कहाँ जा कहाँ जाना चाहिए. सो सिंप्लिसिटी इज वैष्णविज्म, सरलता ही वैष्णवता. ठीक है, हाँ जी माता जी, थैंक यू फॉर सर्टिफाइड. गुरु की खुशी मतलब मेरी खुशी गई तेल लेने. गुरु की प्रसन्नता है बिल्कुल, गुरु जैसे पंजाबी बात करते जैसे बताया इट इज द बेस्ट टेंपल. ठीक है, हमारे को तो ये हीरो टेंपल. लेकिन अगर गुरु बोले कि ना आपको ना कि दूसरी मंदिर में जाना है, बहादुरगढ़ जाना है, ठीक है, और मैं बहादुरगढ़ जाना है, आपको गाजियाबाद जाना है, मैं नहीं जा रहा, आपको द्वारका है, हरगिज नहीं जा रहा. उसको इस मजे को जो किनारे कर दे गुरु की खुशी के लिए, गुरुदेव आपकी चिंताएं मेरी चिंताएं, आपकी एंग्जाइटीज मेरी एंग्जाइटीज, अब आप चिंता मत, मैं हूं ना, मैं करूंगा, मैं भले फेल हो जाऊंगा कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैं गुरु की खुशी के लिए तैयार हूं. तो इस प्रकार से जो हम अपने संतोष को किनारे कर करके असंतोष को स्वीकार करें गुरु की खुशी के लिए, उस असंतोष को स्वीकार करने में जो संतोष मिलेगा ना, दैट इज रियल एवर लास्टिंग संतोष. इसको बोलते हैं साइंस ऑफ संतोष. जो नहीं करते हो जाए मरते पटते रहते और क्या, और तो सुख की तलाश ऐसी, संतोष ऐसे मिलेगा. द साइंस ऑफ संतोष इज नॉट टू सीक संतोष, सीक प्रेम, लव. लव में अपना संतोष नहीं देखा जाता, गुरु और कृष्ण का संतोष देखा जाता, वो किससे संतोष होगा. और फिर जो हमको मिलेगा, अरे एवर लास्टिंग संतोष, ऐसा संतोष को कि सृष्टि को ताकत आपको हिला नहीं सकती, इतना गहरा संतोष, मतलब आपकी लिटरली यू विल फील कि ना मुझे मोक्ष की इच्छा नहीं, ऐसा संतोष प्राप्त होगा. तो गुरु और कृष्ण के लिए एंग्जाइटी लेना यह यही है असली संतोष, द साइंस ऑफ संतोष। जो मेरा स्वभाव नहीं है मैं वो सेवा करूंगा, असंतोष आता है। लेकिन उस असंतोष को जब हमने स्वीकार कर लिया ना अच्छे से हृदय से कि ये असंतोष मेरा है क्योंकि इसमें गुरु की खुशी है, हालांकि मेरा साइकोफिजिकल नेचर नहीं है, बट स्टिल आई डू दैट, तो जो भक्ति में गहरा बन जाएगा ना वो तो सिर्फ वो भक्ति जानते हैं, और कोई बाहर का व्यक्ति इसमें अपना दिमाग नस्ती कोई मतलब उसको क्या मिलेगा। तो अपने साइकोफिजिकल नेचर से हट करके सेवा करना। मैं मैनेजमेंट नहीं जानता लेकिन गुरु ने कहा मैनेजमेंट करना। मैं फंडरेजिंग नहीं जानता, गुरु ने बोला बेटा तुम्हें 100 करोड़ का मंदिर बनाना, मांगो भीख मांगने जाओ। हमने कैसे मांगे यार, क्या करेंगे, नहीं जाना होगा। फिर भक्तों के पास जाएंगे, करुणा चंद्र के पास जाएंगे, गुरु जी आप इतनी अच्छी फंडरेजिंग करते हो, गुरु जी हमें थोड़ा सिखाओ फंडरेजिंग कैसे करें। To learn from Vaishnavas, upon the purpose of coming to Punjab, remember today is to come to associate with Karma Chandra Prabhu and learn from him. कि किस तरह से हम fundraising कर सके। तो हम जब इसको स्वीकार करते हैं, अपने psychophysical nature के परे जा करके जब हम भगवान के और गुरु के संतोष का सोचते हैं, तो हमें जो मिलता है उसको बोलते हैं परम संतोष, आध्यात्मिक संतोष, असली संतोष। Yeah? Okay, we'll stop here. 9:15. मैंने 900 सेकंड एक्स्ट्रा ले लिया आप सबके। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय।